एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
बॉब डिलन, ये नाम सुनते ही शायद गिटार की धुन, वो थोड़ी अलग सी आवाज और जबरदस्त गाने जहन में आते हैं। एक संगीतकार, गीतकार, नोबेल पुरस्कार विजेता भी, एक सांस्कृतिक प्रतीक। लेकिन आज हम उनकी पूरी कहानी या कौन से गाने हिट हुए इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा मतलब गहराई में उतरेंगे उनके काम की, एक ऐसे नजरिए से जो शायद आपने पहले सोचा भी न हो।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर साहित्यिक आलोचक सर क्रिस्टोफर रिक्स की किताब की, डिलन्स विजन्स ऑफ सिन। अब रिक्स, जो ऑक्सफर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, और जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स जैसे अंग्रेजी के बड़े कवियों पर उनके काम के लिए जाने जाते हैं, वो बॉब डिलन को सिर्फ एक रॉक स्टार नहीं मानती।
अच्छा।
हाँ, वो उन्हें अंग्रेजी काव्य परंपरा का एक जरूरी और कह सकते हैं एक गंभीर कवि मानती हैं।
यही तो कमाल की बात है। मतलब एक प्रोफेसर जो सदियों पुरानी क्लासिक कविताएं पढ़ाते हैं, परखते हैं, वो 20वीं सदी के एक रॉक एंड रोल म्यूजिशियन के गानों का इतना गहरा विश्लेषण कर रही हैं, तो फिर रिक्स का मुख्य नजरिया क्या है? वो डिलन के गानों में ऐसा क्या देखती हैं?
देखिए, रिक्स का मानना है कि डिलन के गाने महज आपके लीजिए मनोरंजन या उस समय के हिसाब से विरोध के नारे भर नहीं हैं। उनके मुताबिक डिलन का जो पूरा काम है वो असल में इंसान होने के मतलब से जूझता है। सही गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, निराशा, उम्मीद, ये जो बड़े नैतिक सवाल है ना, उनसे। और इसे समझने के लिए रिक्स वही तरीका अपनाती हैं जो वो मिल्टन या कीट्स के लिए अपनाती हैं, क्लोज रीडिंग।
क्लोज रीडिंग, हाँ सुना है इसके बारे में। मतलब शब्दों के बहुत पीछे जाना है ना?
बिल्कुल, सिर्फ गाने सुनना नहीं बल्कि एक एक शब्द, तुकबंदी कैसी है, गाने का अंदाज क्या है, आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है, इन सब पर बारीकी से ध्यान देना।
लेकिन डिलन का काम तो दशकों में फैला हुआ है, सैकड़ों गाने। रिक्स इसे कैसे, मतलब किस तरह से व्यवस्थित करती हैं? क्या वो शुरू से आखिर तक साल दर साल देखती हैं गानों को?
नहीं, और यही रिक्स का तरीका सबसे अलग और दिलचस्प हो जाता है। वो डिलन के काम को समय के हिसाब से नहीं देखती।
अच्छा,
तो फिर कैसे? वो थीम के हिसाब से देखती हैं, विषय के हिसाब से, और इसके लिए वो एक बहुत पुराने नैतिक ढांचे का इस्तेमाल करती हैं, सात घातक पाप यानी 7 deadly sins,
हाँ,
चार प्रमुख गुण 4 cardinal virtues और 3 swargiya krupaen 3 heavenly graces। विक्स का तर्क यह है कि ये सारी अवधारणाएं जैसे अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लोभ, असंयम, वासना, फिर दूसरी तरफ न्याय, विवेक, संयम, धैर्य और आखिर में आस्था, आशा, करुणा, ये सब डिलन के गानों की आत्मा में कहीं ना कहीं बसी हुई हैं, भले ही डिलन ने खुद कभी इस तरह सोचा हो या नहीं।
वाह, ये तो किसी संगीतकार के काम को समझने का बिल्कुल ही अनूठा फ्रेमवर्क है। पाप, पुण्य और कृपा के चश्मे से देखना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, पापों से शुरू करते हैं फिर।
हाँ बिल्कुल।
रिक्स का इस पर क्या कहना है? क्या मतलब डिलन सिर्फ अंधेरी नेगेटिव बातें करते हैं?
अंधेरी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, इंसानी कमजोरियों की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं, ऐसा रिक्स मानती हैं। उनकी किताब का नाम ही है डिलन्स विजन्स ऑफ सिन, तो जाहिर है इस हिस्से पर उन्होंने काफी गहराई से काम किया है। वो मानती हैं कि डिलन मानवीय कमजोरियों और नैतिक पतन के एक बेबाक और बहुत ही कुशल चित्रकार हैं।
कोई खास उदाहरण देंगी किस पाप को वो सबसे अहम मानती हैं?
रिक्स अभिमान यानी घमंड को सभी पापों की जड़ जैसा मानती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो देती हैं डिलन के शायद सबसे मशहूर गाने लाइक अ रोलिंग स्टोन का।
हाँ बिल्कुल, मशहूर तो बहुत है।
और रिक्स कहती हैं कि ये गाना सिर्फ किसी अमीर लड़की का मजाक उड़ाना भर नहीं है जैसा अक्सर लोग समझ लेते हैं, ये असल में घमंड के शिखर से गिरने की एक दर्दनाक कहानी है, एक तरह का नैतिक नाटक।
ये तो कमाल की बात है कि रिक्स ने प्राइड को इस गाने से जोड़ा। उन्होंने सिर्फ गाने के बोल देखे या कुछ और भी था इसमें?
नहीं नहीं बहुत कुछ। रिक्स गाने की बनावट पर ध्यान दिलाती हैं, कैसे हर अंतरे के आखिर में वो सवाल है, हाउ डज इट फील।
हाँ, वो चुपता है सवाल।
बिल्कुल। और तुकबंदी देखिए, स्टोन, होम, अलोन, अननोन, ये सारे शब्द मिलकर अकेलेपन, बेसहारा होने का एहसास कितना गहरा कर देते हैं, का साक्षी बना देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, पूरी परफॉर्मेंस एक नैतिक फैसला सुना रही है। रिक्स इसे तर्क की तुकबंदी, राइम ऑफ रीजन का भी उदाहरण मानती हैं, जहां तुक सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते बल्कि वो मतलब को बढ़ाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं।
समझ गया। तो गाने का अंदाज, तुकबंदी, आवाज सब मिलकर एक गहरा मतलब बना रहे हैं। अच्छा, और दूसरे पाप जैसे ईर्ष्या या क्रोध के बारे में कुछ?
हाँ, रिक्स ईर्ष्या एनवी के लिए पॉजिटिवली फोर्थ स्ट्रीट जैसे गानों का जिक्र करती हैं। उसमें जो कड़वाहट है, वो दोगलापन है, वो साफ झलकता है। क्रोध के लिए वो मास्टर्स ऑफ वॉर जैसे गानों को देखती हैं, जहां एक तरह का पैगंबर जैसा गुस्सा है जालिम व्यवस्था के खिलाफ।
हाँ, वो गाना तो बहुत पावरफुल है।
बिल्कुल। वहीं आलस्य के लिए रिक्स एक पुराना शब्द इस्तेमाल करती हैं, एक्सिडी।
एक्सिडी, ये क्या है?
इसका मतलब सिर्फ शारीरिक सुस्ती नहीं है, ये एक तरह की रूहानी थकान है, जब जिंदगी बिल्कुल बेमानी फीकी लगने लगती है, जीने की इच्छा कम हो जाती है।
रूहानी थकान, ये तो दिलचस्प है। इसका कोई उदाहरण है डायलिन के गानों में?
बिल्कुल है, मिस्टर टैम्बोरिन मैन। रिक्स के मुताबिक गाने का जो नैरेटर है वो इसी एक्सिडी का शिकार है।
अच्छा।
हाँ, वो कहता है ना, माई सेंसेज हैव बीन स्ट्रिप्ड, माई हैंड्स कांट फील टू ग्रिप, मतलब उसकी इंद्रियां जैसे जवाब दे चुकी हैं, उसमें जीने की इच्छा खत्म हो रही है। ऐसे में वो टैम्बोरिन मैन एक उम्मीद की तरह आता है, शायद कला या संगीत या बस जिंदगी की तरफ वापस लौटने का बुलावा। ये उस रूहानी थकान से मुक्ति की एक पुकार है। ये व्याख्या गाने को एकदम नए मायने दे देती है ना।
वाकई, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अच्छा, पापों के बाद रिक्स गुणों की बात भी करती हैं, क्या डायलिन के गानों में अच्छाई भी दिखती है उन्हें?
हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिक्स का मकसद डायलिन को सिर्फ पापों का गायक साबित करना नहीं है, वो दिखाती हैं कि डायलिन के गानों में न्याय, विवेक, संयम और धैर्य जैसे जो शास्त्रीय गुण हैं, उनकी भी तलाश है। और न्याय, जस्टिस, तो डायलिन के काम का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हमेशा से।
हाँ, ये तो है, उनके कई गाने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा गाना मानते हैं रिक्स?
रिक्स के लिए द लोनसम डेथ ऑफ हैटी कैरोल न्याय पर डायलिन की पकड़ का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है।
हाँ, हैटी कैरोल वाला गाना।
ये गाना एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक अमीर श्वेत युवक था, विलियम ज़ेंसिंगर, जिसने एक अश्वेत महिला वेट्रेस हैटी कैरोल की हत्या कर दी थी और उसे सजा मिली महज 6 महीने की।
बहुत भयानक घटना थी वो।
और रिक्स इस गाने के विश्लेषण में कमाल कर देती हैं। वो दिखाती हैं कि डायलिन कैसे पूरी कहानी बिल्कुल ठंडे तथ्यात्मक अंदाज में सुनाते हैं, कोई भावुकता नहीं, कोई ड्रामा नहीं।
हाँ, हैटी कैरोल वाले गाने में जो बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती थी वो उसका ठंडापन ही है। रिक्स इसे कैसे समझाते हैं?
बिल्कुल। और रिक्स का मानना है कि ये ठंडापन ही गाने की असली ताकत है। डायलिन जानबूझकर सुनने वाले की जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है उसे अंत तक रोक कर रखते हैं।
कैसे?
हर अंतरे की आखिर में वो कहते हैं, नाउ एंट द टाइम फॉर योर टीयर्स, अभी आंसू बहाने का वक्त नहीं है। वो हमें सिर्फ अफसोस जताने नहीं देते हैं। जब अंत में वो हत्यारे की उस हास्यास्पद हल्की सजा का जिक्र करते हैं तो वो जो दबावा ठंडापन है वो एकदम से एक भयानक गुस्से और एक कठोर नैतिक फैसले में बदल जाता है।
अच्छा।
रिक्स कहती है कि डायलिन यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, वो सुनने वाले को एक सख्त नैतिक निर्णय लेने पर मजबूर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे गीत लिखना एक शक्तिशाली नैतिक हथियार बन सकता है।
कमाल है, ये विश्लेषण तो गाने सुनने का तरीका ही बदल देता है सच में। और न्याय के अलावा दूसरे गुण जैसे विवेक, संयम, धैर्य।
और रिक्स मानती हैं कि ये गुण भी डायलिन के गानों में बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे चेंजिंग ऑफ द गार्ड्स या जोकर मैन जैसे कुछ गाने हैं। उनमें मुश्किल हालात का सामना करने का साहस यानी फोर्टिट्यूड या धैर्य वो झलकता है। डायलिन के किरदार अक्सर नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं और उनका जो संघर्ष होता है वो अपने आप में इन गुणों की पड़ताल बन जाता है।
और फिर आता है वो तीसरा हिस्सा, कृपाएं, ग्रेसेस, यानी आस्था, आशा, करुणा।
सही का, ये रिक्स के विश्लेषण का तीसरा और शायद सबसे उम्मीद भरा हिस्सा कहा जा सकता है। ये धार्मिक या कह लीजिए आध्यात्मिक गुण हैं, आस्था, फेथ, आशा, होप और करुणा, प्रेम, चैरिटी, लव। रिक्स मानती हैं कि डायलिन के बाद के दौर के गानों में ये ज्यादा खुलकर सामने आते हैं, खासकर उनका जो गॉस्पेल पीरियड था।
हाँ, वो दौर तो काफी विवादित भी रहा था।
हाँ बिल्कुल, लेकिन रिक्स मानती हैं कि इनकी झलक या इनकी तलाश उनके शुरुआती काम में भी मिलती है।
आस्था के लिए रिक्स किस गाने को सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं? खासकर उस दौर के गानों को तो कई आलोचकों ने, जैसा आपने कहा, पसंद नहीं किया था।
हाँ, और यही रिक्स का विश्लेषण खास हो जाता है। वो डायलिन के गॉस्पेल पीरियड को खारिज नहीं करती, बल्कि वो एवरी ग्रेन ऑफ सैंड जैसे गाने को आस्था पर लिखी गई एक बेहद गहरी और जटिल कविता की तरह देखती हैं।
एवरी ग्रेन ऑफ सैंड।
हाँ। रिक्स इसकी तुलना महान कवि विलियम ब्लेक की कविताओं से और बाइबल के भजनों से करती हैं। वो गाने की बहुत ही महीन तुकबंदी और उसमें जो विनम्रता और आध्यात्मिक समर्पण का भाव है उसका विश्लेषण करती हैं।
उसमें ऐसा क्या खास देखती हैं वो?
रिक्स खास तौर पर इस लाइन पर ध्यान दिलाती हैं, Sometimes I turn, there's someone there, other times it's only me.
कभी लगता है कोई है, कभी लगता है सिर्फ मैं हूँ।
ये कोई सीधी सपाट धार्मिक घोषणा नहीं है, इसमें शक भी है और यकीन भी है। रिक्स इसे आस्था और संदेह का एक बहुत ही सच्चा और खूबसूरत संतुलन मानती हैं, जो इसे किसी उपदेश से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। ये दिखाता है कि डायलिन की कला लगातार विकसित हो रही थी और उनके तथाकथित आध्यात्मिक गानों में भी जबरदस्त साहित्यिक गहराई थी। ये डायलिन की अस्पष्टता का भी एक अच्छा उदाहरण है, जिसे रिक्स कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई को पकड़ने का एक तरीका मानती हैं। जिंदगी हमेशा साफ साफ नहीं होती, उसमें धुंधलापन भी होता है।
बिल्कुल। और आशा और करुणा के बारे में क्या?
आशा के लिए रिक्स फॉरएवर यंग जैसे गानों का जिक्र करती हैं। वो गाना एक आशीर्वाद या प्रार्थना जैसा है, जिंदगी की मुश्किलों को जानते हुए भी अच्छी चीजों की कामना करना। या फिर व्हेन द शिप कम्स इन, जिसमें अन्याय के खत्म होने और एक बेहतर दुनिया आने की उम्मीद है। और आखिर में करुणा प्रेम या चैरिटी लव, जिसे रिक्स सबसे ऊंची कृपा मानती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो आई शैल बी रिलीज्ड को मानती हैं।
हाँ, वो भी बहुत मशहूर गाना है।
और ये सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई की प्रार्थना नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए मुक्ति, शांति और आपसी जुड़ाव की एक पुकार है। ये मैं से ऊपर उठकर हम तक का सफर है।
क्रिस्टोफर रिक्स का ये पूरा विश्लेषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने डायलिन को एक बिल्कुल नए मुकाम पर एक अलग ही रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो उनके मुताबिक डायलिन की कला का मूल तत्व क्या है, मतलब वो बार बार किन चीजों की तरफ लौटते हैं?
देखिए, रिक्स के लिए डायलिन बुनियादी तौर पर एक नैतिक कलाकार हैं। वो लगातार सही गलत, लालच त्याग, न्याय अन्याय, पतन उद्धार, इन जैसे सवालों से जूझते रहते हैं। उनकी कला कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि इन सवालों की जो उलझन है, जो गहराई है, उसको हमारे सामने रखती है। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और रिक्स कुछ खास बातों पर बहुत जोर देती हैं, जैसे डायलिन का अपनी साहित्यिक परंपरा से कितना गहरा रिश्ता है, मिल्टन, ब्लेक, यहाँ तक कि बाइबल से भी। उनकी भाषा और तुकबंदी का कमाल, जो सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि सोचने का जरिया है।
हाँ, वो तर्क की तुकबंदी वाली बात।
बिल्कुल। फिर उनकी आवाज का एक नैतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होना, और कैसे वो बड़ी खूबसूरती से पवित्र और सांसारिक बातों को मिला देते हैं, ये सब चीजें मिलकर उनके काम को इतना गहरा बनाती हैं।
तो रिक्स का ये नजरिया हमें, यानी आज के सुनने वालों को, डायलिन के गानों से आगे बढ़कर क्या सिखाता है? इससे जिंदगी के बारे में क्या सबक मिल सकते हैं?
मुझे लगता है कई सबक हैं। पहला और सबसे जरूरी है गहराई से सुनने और देखने की कला, डीप लिसनिंग या डीप रीडिंग कह लीजिए। रिक्स का तरीका हमें सिखाता है कि किसी भी कलाकृति को, चाहे वो गाना हो, फिल्म हो, किताब हो, उसे सिर्फ सरसरी तौर पर ना देखें, उसके हर पहलू पर ध्यान दें। शब्दों में, धुनों में, आवाज में, बनावट में, सब में मतलब छिपा हो सकता है। ये दिखाता है कि लोकप्रिय कला, जिसे हम अक्सर थोड़ा हल्का मान लेते हैं, उसमें भी कितनी गहराई, कितनी जटिलता हो सकती है।
और ये उस दीवार को भी तोड़ता है जो हम अक्सर ऊंची कला मतलब क्लासिकल और नीची कला यानी पॉपुलर के बीच खड़ी कर देते हैं।
बिल्कुल। रिक्स यही तो साबित करती हैं कि कला का मूल्य उसके लेबल से तय नहीं होता, उसकी अपनी खूबी से होता है। एक रॉक गाने में उतनी ही गहराई और सच्चाई हो सकती है जितनी किसी महान कविता में। ये हमें हर तरह की कला को खुले दिमाग से देखने और उसमें छुपे खजाने ढूंढने के लिए प्रेरित करता है।
भाषा की ताकत का भी जिक्र हुआ था पहले।
हाँ, ये हमें भाषा की शक्ति के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। रिक्स दिखाती हैं कि कैसे एक सही शब्द, एक सटीक तुक, आवाज का सही उतार चढ़ाव पूरे मतलब को बदल सकता है या गहरा कर सकता है। ये हमें अपने आसपास इस्तेमाल हो रही भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है, चाहे वो खबरों में हो, नेताओं के भाषणों में हो, या हमारी रोज की बातचीत में। शब्दों का वजन होता है।
बिल्कुल।
और अंत में वो पाप पुण्य कृपा वाला ढांचा, वो हमें याद दिलाता है कि ये पुराने लगने वाले नैतिक विचार आज भी इंसानी स्वभाव और हमारे समाज को समझने के लिए कितने प्रासंगिक हैं। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, ये इंसान होने के अनुभव का हिस्सा हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हमें क्रिस्टोफर रिक्स के इस पूरे इतने विस्तृत विश्लेषण से तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जिन्हें श्रोता अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी?
ठीक है, तीन मुख्य बातें अगर कहनी हो तो। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, एन इमोशनल इनसाइट। रिक्स हमें दिखाती हैं कि डायलिन की कला इंसान होने के पूरे स्पेक्ट्रम को पकड़ती है, हमारी कमजोरियों, हमारे अंधेरों यानी पापों से लेकर हमारी उम्मीदों, हमारी अच्छाई की तलाश यानी कृपाओं तक। यह हमें हमारी अपनी जटिल भावनाओं का सामना करने और उन्हें समझने में मदद करती है, ये स्वीकार करने में कि हम सब में अच्छा और बुरा दोनों हैं।
ये जरूरी है। दूसरी
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
मैक्सन
ने अकादमिक दुनिया को और हम सबको भी ये मानने पर मजबूर किया कि बॉब डिलन जैसे लोकप्रिय संगीतकार के काम में भी उतनी ही साहित्यिक गहराई और जटिलता हो सकती है जितने किसी क्लासिक कवि के काम में। उन्होंने साबित किया कि लोकप्रिय संगीत भी गंभीर बौद्धिक विश्लेषण का हकदार है और उसे महान काव्य परंपरा का हिस्सा माना जा सकता है। ये सोच, जैसा आपने कहा, संगीत और साहित्य के बीच की दीवारों को गिराती है।
बिल्कुल।
और तीसरी, एक ऐसा सबक जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। रिक्स का तरीका हमें ये सिखाता है कि किसी भी चीज पर, चाहे वो कोई गाना हो, कोई इंसान हो, कोई स्थिति हो, अगर हम गहराई से ध्यान दें, बारीकी से सुने और देखें, जिसे रिक्स क्लोज रीडिंग कहती हैं, तो हम उसमें छिपे गहरे अर्थ और सच्चाइयों को समझ सकते हैं। सतही नजरिए से दुनिया अक्सर सपाट और एक तरफा लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें परतें खुलने लगती हैं। ये ध्यान देने का, गहराई में जाने का हुनर जिंदगी के हर पहलू में काम आ सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।